मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत भी हम लोग आईएएस 2022 की तैयारी के 13वें अंक में कुछ बातें करेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसे अखबारों में भी जगह मिली है और रेडियो न्यूज में भी इस पर चर्चा की गई थी और खासकर उसके हेडलाइंस में इसकी बात थी, और वह है पोचमपल्ली गांव की बात। देखिए, मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, रेडियो के हेडलाइन में भी, रेडियो न्यूज में अगर कोई हेडलाइंस में आती है कोई खबर, तो इसका मतलब है कि वह अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण खबर है। तो पोचमपल्ली की खबर रेडियो की हेडलाइन की खबर थी, तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि ये हो सकता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। जी हाँ, ये हम सबके लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, यूएनओ का संगठन है, विश्व पर्यटन संगठन है ना, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। उसने भारत के इस गांव को, जो पोचमपल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। मतलब बहुत से ऐसे गांव होते हैं, उनमें से एक गांव पोचमपल्ली को चुना गया है और दिसंबर महीने में इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया जाएगा। देखिए, जब हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ गांव, तो उसका क्या अर्थ है, पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। खासकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक पायलट परियोजना है, तो उस पायलट परियोजना के तहत ये सर्वश्रेष्ठ गांव का चयन करते हैं और बकायदे उनको पुरस्कृत भी करते हैं। किन गांव का चयन करते हैं? वो उन गांव का चयन करते हैं जो लोकल कल्चर है, जिसे हम स्थानीय संस्कृति कहते हैं, उनको बढ़ावा दे रही हो, साथ ही साथ जो वहां के जो हेरिटेज है, जो धरोहर है, जो संस्कृति के रूप में ही होगी, उसे सहेज रहे हो, और साथ ही साथ वहां जो कम्युनिटी रह रही है उनको आर्थिक रूप से एम्पावर्ड भी कर रहे हो, मजबूत भी बना रहे हो। और ये जो तीनों के तीनों अंग हैं, वो आप यूं कह लीजिए कि संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जो तीसरा अंश है, वो एक प्रकार से संस्कृति को कैसे हम अपने आर्थिक जीवन से भी जोड़ सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तीन मानक, मतलब महत्वपूर्ण मानक है, उसके आधार पर पोचमपल्ली को चुना गया है। क्या पोचमपल्ली का नाम आपने इससे पहले कभी सुना है, कहीं भी कुछ पढ़ा हो? दोस्तों, पोचमपल्ली बहुत ही प्रसिद्ध साड़ी है। पोचमपल्ली के प्रकार जैसे होती है ना, अलग अलग तरह की साड़ियां होती हैं, बनारसी साड़ी है, उसी तरह से पोचमपल्ली की भी साड़ियां होती हैं। और ये जो गांव है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गांव के हर घर में आपको पोचमपल्ली साड़ियां बनती हुई मिलेंगी। सब जगह पोचमपल्ली साड़ियां बनती हैं। लगभग 500 परिवार हैं और 500 परिवारों में 10,000 करघे हैं। तो वहां आपको ये जो पोचमपल्ली साड़ियों का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुटीर उद्योग वाले किसी क्षेत्र में आ गए हैं। और बड़ी चिकनी साड़ी होती है, सिल्क धागे से फिर बकायदे साड़ियों का निर्माण करते हैं, और अब तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड हो गया है। आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी खासकर आत्मनिर्भर भारत के तहत बकायदे वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो आप उसकी सफलता का आप एक प्रमाण इसे मान सकते हैं। पोचमपल्ली एक और मामले में फेमस है, और वो मामला है कि आचार्य विनोबा भावे जी ने इसी गांव से अपने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 1951 में, और यहां से उन्हें पहली बार एक जमींदार ने 250 एकड़ जमीन दी थी। और इसके बाद तो फिर आप जानते हैं भूदान यज्ञ कैसे आगे बढ़ता चला गया। तो चूंकि यूं कह लीजिए कि ये एक तरह से कला और संस्कृति का हिस्सा है, तो इसे आप अपने दिमाग में रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरवांचल वे एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, देखिए भारत के बहुत बड़े हिस्से में एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जहां एक दूसरे बड़े स्थानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मान करके चलिए कि ये जो एक्सप्रेस वे हैं, एक प्रकार से हमारे आर्थिक विकास को बहुत तेज गति देने वाले माध्यम हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा आधार है, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उन्हें मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत बेहतर तैयारी कर लें। आज मैं आप सबको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अपने कमेंट दिए हैं, भ्रष्टाचार के कारण किसान हितैषी अच्छी योजनाओं पर। ये खासकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक प्रकार से समीक्षात्मक मूल्यांकन जैसा है। ये छोटा सा ही लेकिन अपने आप में बहुत खूबसूरत हिस्सा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, और ये जब शुरुआत की गई थी तो वो ये बहुत अच्छी योजना थी। लग रहा था कि ये किसानों को बहुत ज्यादा सपोर्ट देगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये किसानों की फसल का आपने बीमा कर दिया। आप देखिए कि फसलें किन किन कारणों से नष्ट हो जाती, ढेर सारे कारण होते हैं, तो कम से कम किसान सुरक्षित तो है। और इसमें जो किसानों को देना पड़ता था वो बहुत थोड़ी सी राशि देनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए कि एक हेक्टेयर गेहूं में लगाया जा रहा है तो उसकी जो लागत आएगी लगभग 40,000 के करीब, तो उसमें से किसानों को सिर्फ 600 से 800 रुपए ही देना पड़ेगा बीमा कराने पर, और बाकी राज्य सरकारें देंगी और केंद्र सरकार देगी। तो बहुत अच्छी योजना थी, और लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि यह योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। आप लोग इस एडिटोरियल कमेंट को जरूर पढ़ें, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें कि ये क्यों फेल हो रही है ये योजना। और इसमें एक डेटा दिया हुआ है, मैं खासकर उसका उल्लेख यहां करना चाहूंगा कि सन 2018 में जो खरीफ की फसल है उसके तहत 2.16 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया, यानी कि बीमा कराया। ठीक है, चलिए 2.16 करोड़ ने कराया, हालांकि किसानों की संख्या को देखते हुए वो बहुत कम है, और खरीफ तो हमारे यहां की मुख्य फसल होती है। लेकिन 2021 में इसकी संख्या केवल 1.5 करोड़ रह गई, 2.16 करोड़ से 1.5 करोड़ रह गई, जबकि इसे और ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए था। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान धीरे धीरे अपने आप को इस फसल बीमा योजना से अलग करते जा रहे हैं। तो इसके क्या कारण है, इसकी चर्चा इस एडिटोरियल कमेंट में की गई है, बेहतर होगा कि आप सब इसे देखें। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक एडिटोरियल कमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोवाइड कर रहा हूं, हाउस नॉट ऑर्डिनेंस। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपसे सबसे बात की थी कि सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है, और उस ऑर्डिनेंस को लेकर के बहस की शुरुआत हो गई है, उस पर यह एडिटोरियल कमेंट है। आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ें। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं स्पेशली मेंस की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका संबंध कहीं ना कहीं करंट अफेयर से, भले ही वो सीधे सीधे ना हो। जैसे अब ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है ना, क्यों लाया जाता है, कब लाया जाता है, लाया जाना चाहिए ना, इसको लेकर के बकायदा संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये सब आप किताब से पढ़ लेंगे। लेकिन जब अगर ऑर्डिनेंस से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें इस वर्तमान को शामिल कर लिया जाएगा। अब आप उस शेड को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, पकड़ने के बाद अपने आंसर को आप उस तरीके से झुकाव दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये आपके सामने एक चुनौती है, और उसी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जामिनर को जरा भी ये लग गया कि नहीं नहीं आप प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, आपके लिए ये भी क्वेश्चन एक ऑर्डिनेंस का सिंपल क्वेश्चन बनकर रह गया है, और आप लिख करके भी आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिख करके लिखा भी है, लेकिन पता लगा कि मार्क्स उस तरह के नहीं मिले हैं। इसलिए देखिए, मैं यहां एक बात स्पेशली कहना चाहूंगा कि जैसे इस साल प्री एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से सीधे सीधे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेंस का आप क्या करेंगे? प्री में अगर आप सेलेक्ट हो भी गए और मेंस में रह गए तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएं या न पूछे जाएं प्री में, ये बात मायने नहीं रखती है, और इसके आधार पर आप अपने आप को करंट अफेयर से अलग नहीं कर सकते। प्लीज इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये एडिटोरियल कमेंट्स आप पढ़िएगा, डेफिनेटली इसमें आपको कुछ न कुछ समीक्षात्मक बिंदु मिलेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज मैं आपसे जो भी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है 2-3 मिनट का, उसमें ये बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किताबों के बारे में मैं बता चुका हूं कि सेलेक्ट कर लीजिए और पढ़िए, और कैसे पढ़ेंगे, मुख्य एक किताब होनी चाहिए आपके पास। लेकिन अब जो दूसरी चुनौती होगी आपकी, वो ये होगी कि उस किताब में से किस किस को पढ़ें, और केवल किस किस को पढ़ें ही नहीं, याद रखिए आपको चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, ये नहीं कि सबको पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको सेलेक्ट करना होगा कि किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, और इसके बाद फिर उनको कितना कितना पढ़ना है, यानी कि उनके वेटेज क्या होंगे, उन पर कितना जोर देना है, किस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली उसमें जैसे ही आपका प्रीएम्बल आता है या फंडामेंटल राइट्स आते हैं या राजनीति के निर्देशक तत्व आते हैं, जैसे ही आप इस चैप्टर में आते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। अनुच्छेद किस किस में क्या 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 कहा गया है, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी इतनी अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए कि आप इन चैप्टर्स के प्रोफेसर हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन चैप्टर्स के प्रोफेसर हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन के, तो पता लगेगा कि इससे हर साल प्रश्न पूछे ही पूछे गए हैं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं है कहने का मतलब है कि आप सीधे सीधे एक तरीके से सामान्य रूप में इन चैप्टर्स को पढ़ करके सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। सही उत्तर देने के लिए आपको इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिए मैंने कहा कि किन किन को पढ़ें और कितना कितना पढ़ें, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें दो चीजें आपकी मदद करती हैं। एक तो यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, हालांकि जितना उन्होंने लिखा है उसे कई गुना ज्यादा उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन अभी एक चुनौती है, इस चुनौती का आपको तो सामना करना ही पड़ेगा। और दूसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप देखिए किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें किस तरह से वेटेज दिया जाता है, किस तरह से आपको घुमाया जाता है, छकाने की कोशिश की जाती है, और उस आधार पर फिर उन चैप्टर्स की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस दोस्तों जो 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच 15 दिनों के लिए होंगी, इसमें नीतिका सिंह जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। नीतिका जी, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: ज्योति प्रयागराज से, विकास यादव बरेली उत्तर प्रदेश से, योगेश मीना, गुनू मारंडी राउरकेला ओडिशा से, गौरव मेघवाल उदयपुर से, और पायल खत्री उदयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।